ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷாவாசிய உபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஜெகதீஷ் புரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பிரேம் புரிஜி அத்யாத்ம வித்யா பவனமே, அனவரத் பிரவாகமான ஞான கங்காமே, शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद का विचार मंथन चल रहा है। इस उपनिषद के संबंध में कुछ परिचय, इसका मंगलाचरण आदि पर हम लोगों ने विचार किया था। जैसा कि अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषद है, कारण कि अन्य उपनिषदों की बजाय यही एक ऐसी उपनिषद है जो वेद के संगीता भाग में आई है। अन्य उपनिषद वेद के ब्राह्मण भाग की उपनिषदें होती हैं, लेकिन यह संगीता भाग की उपनिषद है। डायरेक्ट शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है 40वां, इसलिए बहुत महत्व का है। कई विद्वानों ने इस उपनिषद का संबंध भी कर्मकांड के साथ में जोड़ा, ऐसा कहीं पढ़ने को मिलता है। कारण कि 39वें अध्याय पर्यंत शुक्ल यजुर्वेद में ये कणव शाखा की उपनिषद है, वो कर्मकांड का ही प्रसंग आ रहा था, उसको लेकर के इस प्रसंग को भी कर्मकांड के साथ में जोड़ देते हैं। किंतु आदि जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य महाराज, जिनका प्राकटन ही वैदिक ज्ञान के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने के लिए हुआ, भगवान शंकराचार्य महाराज, देखो शंकर का अवतार माने जाते हैं ना, इतनी बड़ी भ्रांति संसार में होती है वेद को लेकर के, भगवान को भी इसके लिए दो दो रूप धारण करने पड़े। संसार के अन्य कोई सामाजिक धार्मिक व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं तो भगवान विष्णु विशेष अवतार लेकर के उस समस्या का समाधान करते हैं कि नहीं। भागवत में 24 अवतार का प्रसंग आया तो 24 अवतारों में किसके अवतार माने गए? भगवान विष्णु के। और अवतार का प्रयोजन गीता में स्पष्ट लिखा ही है, परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में जब भी आवश्यकता पड़ जाती है तो संत पुरुषों की सद्मार्गावलंबियों की रक्षा करने के लिए, दुष्ट प्रवृत्तियों का विनाश करने के लिए, पुनः धर्म स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु आते हैं। लेकिन जब इस संसार पर वैदिक ज्ञान का ह्रास होता है, वैदिक ज्ञान के स्वरूप की विलुप्ति होने लगती है, उस समय के लिए भगवान विष्णु ने कहां कहा कि मैं प्रकट होकर के वैदिक ज्ञान को व्यवस्थित करता हूं? कहीं कहा? उन्होंने तो तीन काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, दुष्टों का श्रृंगार कर दूंगा, धर्म संस्थापना कर दूंगा, सज्जनों की रक्षा कर दूंगा, लेकिन वैदिक ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए जो मुमुक्षु पुरुष हैं उनके लिए भगवान ने क्या किया? परित्राणाय साधु नाम तो हो गई बात, मगर वैदिक ज्ञान का जो स्वरूप बिगड़ चुका होता है उस समय के लिए फिर भगवान शंकर कहते हैं कि इतना काम मेरे पर छोड़ दो। वैदिक ज्ञान का स्वरूप जब बिगड़ता है तो मुझे उतार लेना पड़ेगा। इसलिए वैदिक ज्ञान का जब उल्टा सीधा अर्थ होने लगा तो भगवान शंकर ही आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए ना, इसीलिए तो हर दिन बोलते ही हैं शंकरम। शंकराचार्य कौन है? शंकर ही शंकराचार्य है। और केशवम बादरायणम, व्यास जी कौन है? पर केशव भगवान विष्णु ही है। दोनों ने मिलकर के वैदिक ज्ञान की रक्षा किया, अकेले भगवान विष्णु के वश का खेल नहीं था। ये देख लो आप, इतने बड़ी भ्रांति फैल गई थी। सूत्र भाष्य कर्तो वंदे, दोनों ने मिलकर के काम किया है। बादरायणी व्यास ने सूत्र निर्धारित किए, सूत्र बनाए, लेकिन समाज उसको समझ नहीं पा रहा है, उसका भी उल्टा सीधा जब अर्थ करने लगता है। वेद का तात्पर्य भगवान विष्णु ने किया भी तो लोग समझ न पाए, तो भाष्य कर दो, भगवान ने फिर भाष्य किया उस पर, और उस भाष्य के आधार पर ही आज हम लोग इस मंच के द्वारा चिंतन करते हैं। ये वो अध्यात्म केंद्र है जहां परंपरा से जो हमारा वैदिक ज्ञान चला आ रहा है उसका यथार्थ उद्घाटन इस मंच के द्वारा होता है। आदि जगतगुरु भगवान शंकराचार्य महाराज ने जब इस उपनिषद के ऊपर भाष्य प्रारंभ किया है, वहां सबसे पहले इस बात को स्पष्ट किया कि ये जो उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद के संगीता भाग की उपनिषद है, लेकिन इसको कर्मकांड का अंग नहीं समझना चाहिए। ये उपनिषद केवल ज्ञानकांड को बताने के लिए है। यद्यपि इसमें दो विभाग हैं, दो विभाग स्वतंत्र हैं, कर्म विभाग और ज्ञान विभाग। 18 जो इसमें कुल मंत्र आएंगे, उस 18 मंत्रों में केवल 7 मंत्र ही ज्ञानकांड के आएंगे, बाकी कर्मकांड परक हैं। कुछ लोग इन 7 मंत्रों को कर्मकांड के साथ में जोड़ देते हैं, और उन 18 मंत्रों में 7 और 11 का विभाग है। उसमें भी प्रथम दो जो मंत्र आए हैं, पहला मंत्र ज्ञान परक मंत्र है, और दूसरा जो मंत्र आएगा पूर्वन्येवेह कर्माणि, ये जो मंत्र आएगा ये कर्म विभाग को, उपासना विभाग को स्पष्ट करने के लिए आएगा। इस प्रकार से दो जो मंत्र आएंगे, प्रथम और द्वितीय मंत्र, शेष 16 मंत्रों में इन्हीं का विस्तार देखने को आपको मिलेगा। बहुत सुंदर उपनिषद है, जैसा कि आप सुन रहे थे, इसका नाम ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद चूंकि इसका शुभारंभ ही इसी शब्द के द्वारा हो रहा है, और इतना सुंदर इसका मंत्र का अर्थ है, आओ जितना संभव है उतना करेंगे, बाकी गाड़ी चलती रहेगी, उच्चारण कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैदिक वाणी का उच्चारण करने से भी हमारी वाणी और हमारा मन पवित्र होता है, निर्मल हो जाता है, इसलिए एक बार उच्चारण कर लें। मंत्र इतना प्रसिद्ध है कि बिना पढ़े सुन करके भी आप सहज उच्चारण कर पाएंगे। बस इतनी सी प्रार्थना है कि एक साथ करना, लगे कि कोई बहुत अच्छे सत्संगी उच्चारण कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रख करके। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम्, यत्किंच जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जेथा, मा गृध कस्य स्विद्धनाम्, मा गृध कस्य स्विद्धनाम्। बहुत अच्छा मंत्र है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम शब्द का अर्थ होता है जिसको हमारी इंद्रियां ग्रहण कर पा रही है, जो दृष्टिगत पदार्थ प्राणी दिखाई पड़ रहे हैं, जड़ चेतन स्थावर जंगम संसार में जो भी दिखाई पड़ रहा है, कुछ इंद्रियों का जो भी विषय है, उन सब को इदम शब्द से बोलते हैं। सर्वनाम पद है, इदम का अर्थ होता है यह है, यह कौन है? जिस पर आपकी दृष्टि जा रही है वही, यह है जिस जिसको भी आप देख रहे हैं। इदम सर्वम लगा दिया है, यह भी सर्वनाम शब्द है। सर्वम का मतलब सब कुछ, जो हमारी इंद्रियों का विषय है। इदम सर्वम ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा आच्छादित कर लेने योग्य है। जिसको भी आप देख रहे हो वो सबको ईश्वर से आच्छादित कर देना चाहिए। कौन कौन है जिसको ईश्वर से आच्छादित करना है? यत किंच, जो कुछ भी है, जगत्याम जगत, इस जगती में, इस गतिशील संसार में जो भी गतिशील प्राणी पदार्थ हैं, चाहे स्थानतः गतिशील हैं और चाहे कालतः गतिशील है, दोनों प्रकार की गति होती है। एक स्थान से गति होती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले सब अपने अपने घर में थे और वहां से गति करके अध्यात्म विद्या भवन में आ गए, थोड़ी देर में फिर वापस गति कर जाएंगे, वह है स्थानतः गति। और दूसरी गति है बाल्यकाल से लेकर के और आज जिस स्थिति में पहुंच गए हैं वो कालतः गति है, भीतर से चल रहा है। तो संसार की हर वस्तु व्यक्ति को आप देखिए सब गतिशील है कि नहीं, इसलिए संसार को संसार शब्द दिया जाता है या इसको जगत शब्द दिया जाता है। दोनों ही शब्दों का अर्थ ही यही होता है, संसरति इति संसार, गच्छति इति जगत, जो गति कर रहा है, जो चल रहा है उसको जगत बोलते हैं। और कैसे चल रहा है? सर 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 करके चल रहा है, संसरण कर रहा है, जैसे सांप चलता, कल बता रहे थे आपको, सांप की गति से संसरण करता हुआ, अरे बिना हाथ पैर के ही दौड़ रहा है। सर्प के न हाथ होता है न पैर होता है और फिर भी दौड़ता है कि नहीं, टेढ़ी टेढ़ी गति से। ये सारा का सारा संसार बिना हाथ पैर दौड़ रहा है, ऐसे ही गति चल रही है सबके अंदर, भीतर से तो चल ही रहा है भाई। इस गति के लिए हाथ पैर की आवश्यकता भी पड़ जाए, लेकिन भीतर की जो काल गति चल रही है उसमें क्या है? ऐसे सर्प की तरह चल रहा है। तो जो कुछ भी अस्थावर जंगम पदार्थ है संसार के अंदर, वो सब का सब जिसको देख रहे हैं एकमात्र ईश्वर के द्वारा आच्छादित कर देने चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, इस प्रकार उसके त्याग के द्वारा ही देखने वाले को क्या करना चाहिए? भुंजिथा, रक्षा कर लेनी चाहिए। किसकी रक्षा कर लेनी चाहिए? अभी ध्यान दीजिए, मैं आपको सिर्फ मूल मंत्र बता रहा हूं, इसकी व्याख्या में टाइम लगेगा। तेन त्यक्तेन भुंजिथा माघृथ कस्य स्विधनम, इसलिए उस त्याग के द्वारा ही पालन करो, रक्षा करो। किसकी करो? अपने आप की रक्षा करो। माघृथ, तृष्णा में मत पड़ो, लालच में मत पड़ो, गृधा मत करो। कस्य स्विधनम, स्वित भला, धनम कस्य, धन किसका है? धन उपलक्षित, जिसको भी हम पकड़ करके रखना चाहते हैं। संसार की एक भी वस्तु और व्यक्ति एक रूप में किसी के सामने आज तक रहे नहीं, रह सकते नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं है कि वह समान रूप से रह जाएं। तो जो चीज प्रतिपल बदल रही है वो भला हमारी कैसे हो सकती है? कस्य स्विधनम, धन उपलक्षित जो भी पदार्थ है वो भला है किसका? वो किसी का नहीं, अमृत तृष्णा है। इस प्रकार से जो मूल मंत्र है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा क्रमशः एक एक पद पर हम लोग विचार करेंगे। बहुत सुंदर मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम ईशावास्यम, ये सब का सब ईश्वर से आच्छादित कर देने योग्य है। पहली चीज, ईश्वर क्या है और ये आच्छादन क्या है, उससे सबको आच्छादन ढक देना चाहिए। आच्छादन कर देने का अर्थ है आवृत कर देना, ढक देना, सारे के सारे संसार को ईश्वर ओढ़ा दो। जैसे किसी शरीर को चद्र ओढ़ाई जाती है, ऐसे जगत को ईश्वर ओढ़ा दो, ईश्वर से आवृत कर दो। ऐसा ढकना है तो फिर आच्छादित करना कैसा होगा? ईश्वर कोई साकार वस्तु हो, एक वस्त्र की तरह हो, तो उसको आवृत किया जा सकता है। एक पुस्तक है और उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, अब पुस्तक एक कपड़े से आवृत है, आच्छादित हो गई ना, वो दिखाई नहीं पड़ रही, अब आपको सिर्फ कपड़ा दिख रहा है। तो इस कपड़े की तरह एक आकारवान वस्तु तो हम ईश्वर को नहीं कह सकते, और यदि कपड़े की तरह आकारवान ईश्वर होता तो जो भी आकारवान होगा उसमें तो कई सारे दोष आ जाएंगे। पहला दोष तो उसमें आएगा परिच्छिन्नता का दोष, जो साकार वस्तु होगी वो व्यापक नहीं हो सकती, वो सर्वत्र नहीं हो सकती है। दूसरा दोष आ जाएगा जो वस्तु व्यापक नहीं हो सकती, जो परिच्छिन्न है, एक थोड़े दायरे में रहने वाली होगी, तो दूसरा दोष उसमें आएगा कि वो नाशवान होगी, वो खुद ही नाशवान होगी। तो जिस दिन वो वस्तु जिससे आवृत किया जा रहा वही नष्ट हो जाएगी, तो फिर किससे ढकोगे उसको आप। तीसरा दोष यह होगा कि जितने भी परिच्छिन्न वस्तु होती है वो जन्य होती है, उसका जन्म होता है, और जिसको ईश्वर बोलते हैं उस ईश्वर का न तो जन्म है न ईश्वर परिच्छिन्न है, क्योंकि जन्म होता तो परिच्छिन्न होता और ईश्वर तो व्यापक तत्व है। तब ऐसी स्थिति में उस निराकार व्यापक ईश्वर के द्वारा जगत को कैसे ढके, उसकी दृष्टि तो एक अलग दृष्टि लेनी पड़ेगी। इसके आच्छादित करने का अर्थ है जैसे नाक कान गला हाथ पैर आदि के लिए जितना भी आभूषण बनाए जाते हैं, आभूषण में जो स्वर्ण काम आता है, कोई कहे कि जितना भी आभूषण तुम्हारे पास में है ऐसा करो कि उसको आप सारे के सारे आभूषणों को स्वर्ण से आच्छादित कर दो। कैसे करोगे? जितना भी आभूषण है उसको स्वर्ण से आच्छादित कर दो, सोने से उसको ढक दो। अब आभूषणों को सोने से ढकने के लिए क्या स्वर्ण का दूसरा पतरा बनाना पड़ेगा जिससे उसको ढका जाए? सारे के सारे आभूषणों को यदि स्वर्ण से ढकना है तो केवल दृष्टि में परिवर्तन करना है। जब तक उन आभूषणों को आभूषण की दृष्टि से देखेंगे कि यह हार है, कि यह कुंडल है, कि यह कंगन है, तो हार कुंडल कंगन आदि की दृष्टि से देखेंगे तो आपकी दृष्टि स्वर्ण पर नहीं है, कहां है? उसकी आकृति के ऊपर है। लेकिन मान लीजिए उस आभूषण को आप विक्रय करने जा रहे हैं अथवा आप आभूषण क्रय करने जा रहे हैं, उस समय जब आप खरीदने या बेचते समय देखते हैं तब उस आभूषण की आकृति को देख करके ये सौदाबाजी होती है या उसकी जो क्वालिटी होती है उसको देख करके सौदाबाजी होती है? तो जिस वक्त उस आभूषण के क्रय विक्रय के समय जो हमारी दृष्टि होती है कि यह स्वर्ण है, असली है कि नकली है, यह चीज खास करके देखी जाती है, तो जितने सारे सामने डाले गए आभूषण होंगे उन सब में आप बार बार एक ही चीज ढूंढोगे कि इसका जो मेटेरियल है वो असली है कि नकली है। वहां स्वर्ण को ही देख रहे हैं, आभूषण की आकृति गौण है, पहली चीज उसके क्वालिटी को देखा जाता है। तो जिस प्रकार से आभूषण को स्वर्ण की भावना से, भावना भी नहीं है, हकीकत यह है कि वो यथार्थ दृष्टि है। भावना में तो एक मान्यता हो जाती है, जैसे एक पत्थर को, गोल मटोल पत्थर है, उसको शिवजी की भावना से देख लिया, एक गंडकी नदी से निकाला हुआ पत्थर है उसको शालिग्राम की दृष्टि से देख लिया, एक कागज के ऊपर बना हुआ चित्र है उसको आप गुरु की तस्वीर या लक्ष्मी जी की तस्वीर करके देख लिया है, एक मिट्टी से बनाई हुई मूर्ति को आपने गणपति की दृष्टि से देख लिया, वहां तो भावना है, उसमें भावना करो कि ये गणेश जी हैं, ये लक्ष्मी जी हैं, ये गुरु जी हैं, ये शिव जी हैं, ये विष्णु जी हैं। ऐसे यहां पर भावना की बात नहीं बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कोई खोट है, धातु सही नहीं है, और यदि दुकानदार कहे कि आप पहले ये मान लीजिए कि ये सोना है, तो आके आप मान लेंगे भाई? सवाल ही नहीं है। मान कैसे लेंगे? हम पहले जानेंगे और जान करके फिर व्यवहार करेंगे। यहां भगवती श्रुति इस मंत्र में मानने के लिए नहीं कह रही है कि ऐसा मान लो कि सारा का सारा संसार में ईश्वर है, ऐसा नहीं है। ईश्वर दृष्टि से आच्छादित करने का अर्थ है, जैसे स्वर्ण को की दृष्टि से हमने आभूषणों को आच्छादित किया है, ऐसे ही ईश्वर की दृष्टि से सारे जगत को आच्छादित कर देना चाहिए। ये बात इस मंत्र में कही जा रही है। केवल अपनी दृष्टि में परिवर्तन की जरूरत है। दिखाई तो वही पड़ेगा संसार जैसा दिख रहा है, लेकिन यथार्थ दृष्टि होते बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। मेरा एक प्रसिद्ध उदाहरण है, मैंने इस मंत्र से कई बार दिया होगा आपको, कि मान लीजिए आप कहीं साड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं और साड़ी खरीदने के लिए कहीं शोरूम में गए। एक बार आप पूरे शोरूम में अपनी दृष्टि दौड़ाएंगे ना,